नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तस्करी नेटवर्क चलाने वाले लोगों पर नकेल कसने और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर सरकारी सहयोग का आह्वान किया है। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा आयोजित प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों को अवैध व्यापार के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए आपस में जानकारी साझा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनके द्वारा साझा की गई जानकारी कार्रवाई योग्य हो। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 50-60 साल में तस्करी या अवैध तरीके से वस्तुओं के व्यापार की प्रकृति में बदलाव नहीं आया है। अभी बहुमूल्य धातु, नशीले पदार्थ, जंगल या समुद्री से निकले कीमती भंडार की ही तस्करी होती है। उन्होंने कहा, ऐसे में मोटे तौर पर तस्करी वाली वस्तुएं कमोबेश पहले की तरह ही हैं। कोई ऐसा नया क्षेत्र नहीं है जिन पर सीमा शुल्क अधिकारियों को हैरानी हो। यदि वह काफी पहले से चल रहा है तो अब हमें इस बारे में काफी जानकारी हो जानी चाहिए कि इसके पीछे कौन ताकते हैं। JSW वेंचर्स ने सोमवार को कहा कि उसने ई कॉमर्स फर्म पर्पल में फंड वन की अपनी हिस्सेदारी मणिपाल समूह को बेच दी है। JSW वेंचर्स ने एक बयान में कहा कि कंपनी दूसरे फंड के जरिए पर्पल में अपना निवेश जारी रखेगी। JSW वेंचर्स के प्रबंध भागीदार सचिन तागरन ने कहा, पर्पल 2016 में एक फंड के रूप में हमारे शुरुआती निवेश में एक था और इसने 57% IRR दिया है। इसने गैस के साथ हमने पहले फंड के कुल निवेश का 2.7 गुना प्रतिफल दिया है। दूसरे फंड के जरिए हम पर्पल में निवेश जारी रखेंगे। JSW वेंचर्स ने मई 2023 में पर्पल में फंड वन में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेचा था। कंपनी ने लेन देन के वित्तीय विवरण के बारे में नहीं बताया। आईफोन विनिर्माता एप्पल इंडिया का राजस्व मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 48% बढ़कर 49,322 करोड़ रुपए रहा है। कारोबार आसूचना कंपनी टॉफलर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। एप्पल इंडिया की आमदनी इससे पिछले वित्त वर्ष में 33,381 करोड़ रुपए रही थी। साल 2022-23 में कंपनी का मुनाफा 77% बढ़कर 2,230 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो 2021-22 में 1,263 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का कुल खर्च 46,444 करोड़ रुपए रहा। 2021-22 में ये आंकड़ा करीब 71,693 करोड़ रुपए था। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय में सुधार के लिए WTO सदस्यों से औपचारिक बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। भारत का मानना है कि मौजूदा अनौपचारिक विचार विमर्श कई देशों के लिए वार्ता में भागीदारी को लेकर अड़चन पैदा कर रहा है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि इस विषय पर औपचारिक बातचीत से अगले साल फरवरी में अबुधाबी में WTO के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किसी तरह की सहमति बनाने में मदद मिल सकती है। पिछले सप्ताह जिनेवा में WTO सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान ये मुद्दा उठा। कुछ देशों ने बातचीत की अनौपचारिक प्रणाली पर अपनी चिंताएं जताई। अधिकारियों ने कहा, हमें इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द औपचारिक बनाना होगा। भारत ने कहा कि अगर आप WTO की विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इस पर बात करने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी संचालित लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप आई थिंक लॉजिस्टिक्स ने सीमा पार सामान भेजने के लिए फेडेक्स के साथ करार किया है। आई थिंक लॉजिस्टिक्स ने सोमवार को बयान में कहा कि इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतरने वाले ई कॉमर्स विक्रेताओं को शिपिंग समाधान और पर्याप्त लागत बचत प्रदान करना है। इसी महीने की शुरुआत में लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्स ने देश के दूरदराज के हिस्सों में ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट के साथ गठजोड़ किया था। कंपनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान भेजने की जटिलताएं कई बार मध्यम आकार की ई कॉमर्स कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। इसकी वजह से उपभोक्ता मांग और सीमा शुल्क नियमों की विविधता है। ये गठजोड़ फेडेक्स के गहन परिवहन नेटवर्क को उसके व्यापक SaaS समाधान से जोड़कर उन चुनौतियों को हल करने का प्रयास करेगा। इसके जरिए सभी आकार की कंपनियां फेडेक्स की दरों पर सीमा पार सामान भेजने की अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। विशेष इस्पात बनाने वाली कंपनी गुडलक इंडिया का शुद्ध लाभ सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 70% बढ़कर 34.70 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 20.36 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 13% बढ़कर 887.75 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 783.08 करोड़ रुपए थी। भारत की सबसे बड़ी LNG आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 9% बढ़ा है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि जुलाई सितंबर तिमाही में उसने 855.74 करोड़ रुपए या 5.70 रुपए प्रति शेयर का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया। एक साल पहले इसी अवधि में ये आंकड़ा 785.73 करोड़ रुपए या 5.24 रुपए प्रति शेयर था। गैस की कम कीमतों के कारण आय 21.6% घटकर 12,532.57 करोड़ रुपए रही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।